रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संघीय संसद की बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के अवरोध के कारण आज भी स्थगित। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री दीर्घ बहादुर सोडारी को प्रदेश सभा से विश्वास का मत प्राप्त। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन करने के लिए फिनलैंड सरकार से प्राप्त होने वाले करीब 13 मिलियन यूरो अनुदान स्वीकार करने का मंत्रिपरिषद बैठक का निर्णय और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीच यूक्रेन संकट के विषय में हुआ विचार विमर्श। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में भी नेपाली कांग्रेस के सांसदों ने सहकारी मामले में संसदीय जांच समिति गठन की मांग करते हुए संसद में नारेबाजी की, जिसके बाद संसद की बैठक कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज की बैठक की शुरुआत में सभामुख देवराज घिमरे ने बैठक की कार्यवाही शुरू होने की बात कही तो विपक्षी दल के सांसदों ने नारेबाजी और विरोध जताया। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच भी सभामुख घिमरे ने बैठक में राष्ट्रपति कार्यालय से मिले कुछ पत्र पढ़े। वहीं सभामुख घिमरे ने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रवि लामिछाने को अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में सदन में बोलने के लिए समय दिया, लेकिन सभामुख के आग्रह के बावजूद विपक्षी दल के सांसदों ने हंगामा मचाया, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने खड़े होकर उनका विरोध किया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल शुक्रवार सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा की बैठक भी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के अवरोध के बाद स्थगित कर दी गई। अगली बैठक कल दोपहर 1:15 पर बुलाई गई है। सरकार ने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम क्रियान्वयन करने के लिए फिनलैंड सरकार से प्राप्त होने वाले करीब 13 मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार करने का निर्णय किया है। आज सिंह दरबार में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने ऐसा निर्णय किया। ये जानकारी सरकार की प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने दी। मंत्रिपरिषद बैठक ने नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान विकास समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर प्राध्यापक डॉ लेखनाथ शर्मा और न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति के अध्यक्ष पद पर पत्रकार संगीता खड़का को नियुक्त करने का निर्णय किया। इसी तरह बैठक ने नेपाल प्रशासनिक सेवा समूहीकरण अंतर्गत राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी पद पर लोकनाथ पौड़ेल को नेपाल कृषि वन सेवा समूहीकरण अंतर्गत राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी पद पर राजेंद्र प्रसाद मिश्र को पदोन्नति करने का निर्णय किया है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ने कहा कि हमें लोकतंत्र को मजबूत कर आगे बढ़ना चाहिए। आज काठमांडू में आयोजित प्रजातांत्रिक विचार समाज की 26वीं साधारण सभा और लोकतांत्रिक योद्धा सम्मान कार्यक्रम में सभापति देउवा ने कहा कि प्रजातांत्रिक विचार समाज लोकतंत्र को मजबूत और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सभापति देउवा ने कहा कि पूर्व मंत्री योग प्रसाद उपाध्याय ने लोकतंत्र और नेपाली कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में अहम योगदान दिया है। सभापति देउवा ने कहा कि गिरिबंधु टी एस्टेट का फैसला एमाले के समय में हुआ था, कांग्रेस के समय में नहीं। इसके लिए कांग्रेस को दोष नहीं दिया जा सकता। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने कहा कि हम सरकार में शामिल हैं, इसलिए हम विभाजन के पक्ष में नहीं हैं। केंद्रीय कमेटी बैठक में निर्णयों को सार्वजनिक करने के लिए आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल ने कहा कि वाम पार्टियों की बीच एकता की आवश्यकता है। पार्टी की हुई केंद्रीय कमेटी बैठक ने 10वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में पेश किए जाने वाले राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मति से पारित करते हुए 18 सूत्रीय समसामयिक प्रस्ताव भी पारित किया। इसी बीच पार्टी की सचिवालय बैठक ने आगामी महाधिवेशन में साझा दस्तावेज पेश करने का निर्णय किया है। पार्टी के राजनीतिक समाजवादी कार्यक्रम विधान और सांगठनिक प्रतिवेदन को अधिक समृद्ध बनाने के लिए केंद्रीय नेताओं द्वारा सुझाव सहित अनुमोदन के लिए सचिवालय बैठक में भेजने की सिफारिश की है। ये जानकारी केंद्रीय सदस्य मोहन गौतम ने दी। सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री दीर्घ बहादुर सोडारी ने प्रदेश सभा से विश्वास मत प्राप्त किया। प्रदेश सभा की आज की बैठक में मुख्यमंत्री शोराड़ी द्वारा विश्वास मत के लिए पेश किए गए प्रस्ताव के पक्ष में 28 मत प्राप्त हुए। ये जानकारी सभामुख भीम बहादुर भंडारी ने दी। विपक्षी नेपाली कांग्रेस के 18 सदस्य, नागरिक उन्मुक्ति के 5 सदस्य और राप्रपा के 1 सदस्य ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिए बिना बैठक से बाहर निकल गए। प्रदेश सभा से विश्वास मत प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री शोराड़ी ने कहा कि प्रदेश सरकार 1 या 2 दिन में पूरी हो जाएगी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रीय हित के संवर्धन, सुशासन और तीव्र विकास को आगे बढ़ाने के लिए अग्रगामी और राष्ट्रीय शक्ति को निर्णायक तह पर पहुंचाने पर जोर दिया। मदन आश्रित के 31वीं स्मृति दिवस पर पार्टी द्वारा आज मदन नगर बलखू में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सभी तरह के आक्रमण को हराते हुए एमाले अपराजेय शक्ति के रूप में स्थापित होते आ रहा है। उप प्रधान एवं गृहमंत्री रवि लामिछाने ने अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से बाहर जाने वाले तथा नेपाल आने वाले यात्रियों को झंझट रहित सेवा देने का निर्देश किया। आज हज कमेटी में जाने वाले को विदाई के लिए विमानस्थल पहुंचे उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री लामिछाने ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के विभिन्न क्षेत्रों के अनुगमन के बाद वह निर्देश किया। इसी तरह मंत्री लामिछाने ने आगमन और प्रस्थान कक्ष के सौंदर्यकरण में भी ध्यान देने का निर्देश किया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन में सृजना हुए संकट से बचने के लिए तथा खास करके विपद के सामना करने में संचार माध्यम ने सूचना और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। आज संचारिका समूह नेपाल द्वारा आयोजित विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ पर विश्व के लिए प्रेस और वातावरणीय संकट के सामना में पत्रकारिता विषयक अंतर्क्रिया में मंत्री शर्मा ने ये बात कही। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने विभिन्न संवैधानिक आयोगों से अंतर्क्रिया किया है। आज मंत्रालय में हुए विचार विमर्श में मंत्रालय ने समन्वय आयोग से अब तक की गतिविधियों पर चर्चा की है। संवाद कार्यक्रम में संवैधानिक आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों ने संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री भानुभक्त जोशी के साथ आयोग में समस्याओं और समाधानों पर चर्चा की। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल ने कहा कि गर्म हवा, लू के प्रभाव को रोकने और जोखिम को कम करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी और तुरंत लागू की जाएगी। आज सिंहदरबार स्थित आपदा प्राधिकरण में आयोजित संवाद कार्यक्रम में कार्यकारी प्रमुख पोखरेल ने कहा कि चूंकि लू के कारण तराई क्षेत्र की जीवन स्थितियां कठिन होती जा रही है, इसलिए जोखिम कम करने के लिए आवश्यक कार्य योजना बनाई जाएगी और काम को आगे बढ़ाया जाएगा। पाल्पा की निषदी गांवपालिका वार्ड नंबर 4 मतिया डांडा स्थित भीतरी सड़क पर जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में निषदी 4 मित्याल बेलखर के राजीव सुनारी और निषदी 4 मित्याल घ्यांगसीबास के तेजन सौ में शामिल है। यह जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय पाल्पा के डीएसपी सुगंध श्रेष्ठ ने दी। परसा जिले को आज पूर्ण वैक्सीन जिला घोषित की गई। आज बीरगंज में आयोजित घोषणा कार्यक्रम में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव प्रमोद कुमार यादव ने परसा जिला पूर्ण वैक्सीन घोषित होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। पुतिन 2 दिन के दौरे के दौरान चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। पुतिन और सी जिनपिंग की मुलाकात पर पश्चिमी देशों की नजर है। रूस और चीन की साझेदारी कैसे आगे बढ़ेगी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात में इस बात पर हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से अधिक समय से युद्ध छिड़ा हुआ है। इस युद्ध की वजह से अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालांकि इस दौरान चीन रूस की आर्थिक स्थिति संभालने में मददगार साबित हुआ है। चीन पर रूस की सेना को तकनीक और हथियार मुहैया करवाने के आरोप भी लगे हैं। इस वजह से चीन पर दबाव भी बनाया जा रहा है। चीन इन आरोपों को खारिज करता है और उसका दावा है कि वह रूस को किसी तरह की सैन्य सहायता नहीं दे रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संघीय संसद की बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के अवरोध के कारण आज भी स्थगित। सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री दीर्घ बहादुर सोराड़ी को प्रदेश सभा से विश्वास मत प्राप्त। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन करने के लिए फिनलैंड सरकार से प्राप्त होने वाले करीब 13 मिलियन यूरो अनुदान स्वीकार करने का मंत्रिपरिषद बैठक का निर्णय। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीच यूक्रेन संकट के विषय में हुआ विचार विमर्श। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।